विचार चल रहा है पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञान का साधन है महावाक्य प्रमाण शब्द प्रमाण वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। पदार्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। वाक्य है महावाक्य तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि, और वाक्यार्थ है कौन? महावाक्य का अर्थ क्या है? जीव ब्रह्म का एकत्व। एकत्व कहना है नहीं तो एक्य बोलना है। एक्य कहो एकत्व कहो। और पदार्थ यहां पर तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, लेकिन तत्पदार्थ वाचार्थ भी होता है लक्षार्थ भी होता है। ठीक इसी प्रकार त्वम पदार्थ वाचार्थ भी है और लक्षार्थ भी है, लेकिन त्वम पद का वाचार्थ का एकत्व ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता है, इसे लक्षार्थ का निर्धारण पहले होना चाहिए कि मैं कहने से हम किसको समझते हैं। इसका जब तक निर्धारण नहीं होगा फिर विचार नहीं हो सकता है कि ब्रह्म के साथ एकत्व होगा कि नहीं होगा। लक्षार्थ का निरूपण तब होगा जब शोधन किया जाएगा, इसलिए शोधन चल रहा है त्वम पदार्थ। वाचार्थ से लक्षार्थ भिन्न होता है। गंगा प्रवाह से गंगा तीर भिन्न होता है, इसलिए यहां पर सबसे पहले त्वम पद का वाचार्थ त्वम पद का लक्षार्थ को बता जा रहा है। त्वम पद का वाचार्थ है चिदाभास, त्वम पद का लक्षार्थ है कूटस्थ ब्रह्म। तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है कि कूटस्थ चिदाभास से भिन्न है। तो निरूपण किया जा रहा है कि चिदाभास से कूटस्थ ब्रह्म भिन्न होता है। दो प्रकार के ज्ञान है, एक अनित्य ज्ञान, दूसरा होता है नित्य ज्ञान। इसको दृष्टांत के द्वारा स्वामी भारती तीर्थ विचार कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक में बताया, दीवार में एक सामान्य प्रकाश है, आकाशस्थ सूर्य का प्रकाश, वो एक है सामान्य है, और अनेक दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य अनेक है। यद्यपि सूर्य एक है, दर्पण रूपी उपाधि से वो अनेक जैसा होता है, इसलिए उसका प्रकाश भी अनेक जैसा हो जाएगा। तब प्रतिफलित प्रकाश का संबंध भी हुआ दीवार के साथ। तो जिसमें प्रकाश नहीं छोड़ेंगे, दर्पण को हटा दिया अथवा दर्पण के ऊपर कुछ ढक दिया, तो प्रतिफलित प्रकाश का संबंध दीवार के साथ नहीं होता है, फिर भी दीवार दिखता है। तो किस प्रकाश से दिखता है? सामान्य प्रकाश से दिखता है। ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत समझना है, तृतीय श्लोक में दृष्टांत है। और दृष्टांत जो भी होता है अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। इसलिए इस बात को ध्यान देनी चाहिए कि जहां पर आत्मा का कथन किया जाता है शास्त्र में, आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप वाला है, वो इतने जानने से अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो जिसका स्वरूप सच्चिद आनंद बताया जा रहा है वह स्वरूप अपना है, इसको कहा जाएगा अपरोक्ष ज्ञान। इसलिए दृष्टांत जो होता है अपने लिए। देखो तृतीय श्लोक में दृष्टांत बताते हैं। अवतरण लिखते हैं रामकृष्ण टीकाकार, दृष्टांत सिद्धम अर्थम दृष्टांतिके योजयति। टीका मिल गई ना सबको? दृष्टांत सिद्धम अर्थ, दृष्टांते यह सिद्धम अर्थ, सिद्ध अर्थ, सिद्ध मतलब निश्चित हो गया है ना? तो क्या निश्चित हुआ? कि सामान्य प्रकाश विशिष्ट प्रकाश से अलग होता है, दृष्टांत में ही समझना है ना? सामान्य प्रकाश में एकत्व है ना? और विशिष्ट प्रकाश में कैसे है? अनेकत्व है, नाना भेद है। और क्या समझना है? सामान्य प्रकाश नित्य है ना? पहले दृष्टांत को समझेंगे तब तो दृष्टांत को समझेंगे है ना? तो सामान्य प्रकाश नित्य है और कैसा है? एक है। और विशिष्ट प्रकाश जो है अनेक है और कैसा है? अनित्य है। इतना दृष्टांत में समझना है। तो उसको दृष्टांत में भी घटा रहे हैं। देखो दृष्टांत के योजयति मतलब घटा रहे हैं। दृष्टांत में जो निश्चित अर्थ सिद्ध वाला निश्चित निश्चित अर्थ को दृष्टांतिक में घटा रहे हैं। उच्चारण किया जाए, चिदाभास विशिष्टानाम, चिदाभास विशिष्टानाम तथा नेक धियामसौ, तथा नेक धियामसौ संधिं धियामभावं च, संधिं धियामभावं च भासयन् प्रविविच्यताम्, भाषयन् प्रविविच्यताम्। तथा तथा मतलब उस प्रकार से, किस प्रकार से? जैसे विशिष्ट प्रकाश न हो तब भी सामान्य प्रकाश रहता है ना? और भी कह दिया कि विशिष्ट प्रकाश की संधि में जो दर्पण का प्रकाश जा रहा है दीवार में है ना, जो मध्य जो जागा है उसमें भी सामान्य प्रकाश रहता है। दो हो गए देखो हम है ना, विशिष्ट प्रकाश न होने पर भी सामान्य प्रकाश रहता है, और जिसमें विशिष्ट प्रकाश का संबंध हो रहा है उसमें भी जो संधि अवस्था है, संधि जगह है, बीज वाली जगह है, वहां पर भी सामान्य प्रकाश रहता है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं अनेक धियाम संधिम, अनेक धियाम संधिम। अनेक धी मतलब क्या? बुद्धि। बुद्धि से यहां पर क्या लेनी है? वृत्ति। वृत्ति घटाकार पटाकार वृत्ति धर्म है ना। तो वो वृत्ति जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना। तो बुद्धि जड़ होने से, बुद्धि से होने वाली जो वृत्ति है घटाकार पटाकार वृत्ति, उसको भी क्या कहा जाएगा? जड़ी कहा जाएगा, है ना। लेकिन चक्षु का संबंध होता है घटपटादि वस्तु के साथ, है ना। तो चक्षु के माध्यम से अंतःकरण में एक वृत्ति होती है। तो अंतःकरण सावयव पदार्थ है, निरवयव तो है ही नहीं, सावयव होता है और पंचीकृत पंच महाभूत से बनता है। तो अपंचीकृत पंच महाभूत भी सावयव पदार्थ है, इसलिए उसका कार्य भी कैसा होगा? सावयव होगा। और निरवयव पदार्थ में तो परिणाम नहीं हो सकता है, सावयव पदार्थ में परिणाम होता है। जैसे कि मिट्टी का परिणाम घड़ा हो गया, समझ में ना। इसी प्रकार अंतःकरण का ही परिणाम होता है। क्यों होता है? हेतु क्या बताया? सावयव होने से त्रिगुणात्मक हो गया ना। जब निश्चय होता है ये घड़ा है, निश्चय होता है, तो उस जो निश्चयात्मिका वृत्ति होती है ना, तब उस अंतकरण को क्या बोल देते हैं? बुद्धि बोलते हैं। एक ही अंतकरण है ना, हाँ, उसको बुद्धि कह देंगे। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं। तो चक्षु का संबंध होने पर अंतकरण सावयव है, इसलिए उसमें एक वृत्ति होती है, परिणाम को वृत्ति बोलते हैं। अब वृत्ति तो जड़ है, तो वो जड़ वृत्ति घट को प्रकाशित नहीं कर सकती है। वृत्ति में चेतन होना चाहिए, है ना। तो उस वृत्ति जो अंतकरण की घटाकार पटाकार वृत्ति हुई, समझ में ना। लेकिन यहां पर भी इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो घटाकार पटाकार जो वृत्ति बोलते हैं ना, घट का जैसा आकार होगा ऐसा एक अंतकरण आकार होता है, ये सामान्य रूप से बोल देते हैं, है ना। तो घड़ा तो बहुत बड़ा है और अंतकरण तो बहुत छोटा है, तो घड़े का जैसा आकार है, जितना आकार है अंतकरण का होगा क्या उतना आकार? फिर तो बोलते हैं भाई अंतकरण की घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति। अथवा जिसका आकार नहीं है, है ना, तो उसी प्रकार का आकार अंतकरण का कैसा होगा? जैसे देखो घट का आकार तो है, इसलिए अंतकरण का आकार हो गया मान लो, है ना। लेकिन घट में जो रूप है उसका कोई आकार है क्या? नहीं ना है। फिर भी आकार कैसा होगा अंतकरण का? फिर बोलते अंतकरण की रूपाकार वृत्ति। घट का आकार है, रूप का तो कोई आकार है नहीं, है ना। ठीक इसी प्रकार सुख का कोई आकार है क्या? रसगुल्ले का तो आकार है, तो रसगुल्ला खाने पर जो सुखाकार वृत्ति होती है, सुख का तो कोई आकार है नहीं, फिर सुखाकार कैसे होगा अंतकरण? ठीक इसी प्रकार यहां पर भी समझना है, ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, है ना। तो ब्रह्माकार वृत्ति कहां पर होगी? अंतकरण में होगी, है ना। तो ब्रह्म का कोई आकार है? फिर आकार नहीं तो फिर अंतकरण तद आकार वाला कैसे होगा? इसलिए इसको कहते हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द ये जो आकार बोलते हैं ना, घटाकार, पटाकार, रूपाकार, ब्रह्माकार, उसको विषय बनाना, विषय को विषय बनाना, यही अंतकरण का आकार है। विषय को विषय बनाना, समझ में ना, वही अंतकरण का क्या है? आकार। घट को विषय बनाना, यही अंतकरण का घटाकार है, घटाकार वृत्ति। रूप को विषय बनाना, यही अंतकरण की रूपाकार वृत्ति है, समझ में ना। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म को विषय बनाना, यही ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकरण की, समझ में ना। इसमें यहां पर भी थोड़ा समझ लेना है। तो ब्रह्म तो मन का विषय होता नहीं है, है ना? फिर जो है ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी अंतकरण में? अब ब्रह्माकार वृत्ति न हो तो अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? इसका तात्पर्य ये है, तो मन जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना, जड़ है, चेतन तो है ही नहीं, स्वयं प्रकाश तो है ही नहीं है। तो ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, है ना? तो स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है, मन उसको कैसे विषय करेगा, है ना? मन से तो ब्रह्म प्रकाशित होगा नहीं। मन से यदि प्रकाशित हो गया तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, भी दृश्य हो जाएगा, बराबर ना। इसका तात्पर्य ये होता है, समझ करके रखिएगा, मन जब ब्रह्म को विषय करने जाएगा, मन ही उससे भाषित हो जाएगा, पकड़ में है ना। मन जब ब्रह्म की ओर, ब्रह्म को विषय करने जाएगा, मन ही क्या हो जाएगा? स्वयं स्फुरित हो जाएगा। जैसे कि आप अनुभव में घटाओ, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसी अवस्था मान लो, है ना? आप शांत होकर के बैठे हैं, कोई भी वृत्ति नहीं है अंतकरण की, है ना? तो आप कैसे है उस समय? निर्विशेष है। आप दृष्टा है कि दृश्य है उस समय? क्या है? कोई नहीं ना है, है? तो आप पति है कि पत्नी है उस समय? कुछ भी नहीं है ना? लेकिन एक संकल्प हुआ, एक संकल्प हुआ, वो संकल्प झड़ से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? जिसका प्रकरण चल रहा है, कूटस्थ से जाना जाता है। जो आपका स्वरूप है, संकल्प विकल्प से पहले भी, उसको यहां पर निर्विशेष कह रहे हैं। वही क्या है? तम पद का लक्षार्थ है, वहां तक पहुंचना है। प्रेमपुरी में आकर के कहां तक पहुंचना है? वहां तक पहुंचना है कि तत्पद का, तम पद का जो लक्षार्थ है ना, निर्विशेष, तो उसमें एक संकल्प आ गया, चाहे अनुकूलात्मक हो चाहे प्रतिकूलात्मक हो, वो झड़ से उससे प्रकाशित हो जाता है, है ना? तो मन ही उस ब्रह्म से प्रकाशित हो जाना, यही मन का विषय ब्रह्म होना है, यही मन की, अंतकरण की ब्रह्मकार वृत्ति है, ये ध्यान में रखो। तो यहां पर कहते हैं, तो अनेक धियाम, बुद्धि तो एक ही है अंतकरण, लेकिन उसकी वृत्ति अनेक हो जाती है। घट आ गया, घट के साथ संबंध हुआ, तो घट के साथ अंतकरण का संबंध कैसे होगा? चक्षु के द्वारा होगा। भाई अंतकरण तो यहां पर है शरीर में, और घट तो बाहर है, तो संबंध दोनों का कैसे होगा? चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा होगा। जैसे दृष्टांत देते हैं ना, जैसे तालाब में जल हो, जल जाएगा खेती में, तो कैसे जाएगा? नाली के द्वारा जाएगा, नाली बना दिया है ना। और खेती का, जमीन का जैसा आकार होगा, जल का भी आकार ऐसा हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार यहां पर तालाब का जल कौन हो गया? अंतकरण। और जमीन कौन हो गया? घटपट आदि विषय। और नाली कौन है? इंद्रिय नाली हो गया। तो इंद्रिय रूपी नाली के द्वारा अंतकरण की वृत्ति रूपी जल जाएगा घटपट आदि जमीन तक के तीत। और उसका जैसा आकार ऐसा अंतकरण का आकार हो जाएगा है, उसको विषय करेगा। तो उसको कहते हैं वृत्ति, घटाकार पटाकार वृत्ति अनेक हो गए। वो वृत्ति स्वच्छ होने के कारण, जैसे दर्पण स्वच्छ है, इसी प्रकार वृत्ति सात्विक वृत्ति स्वच्छ है। उस वृत्ति में चेतन का आभास होगा, उसको कहते हैं यहां पर चिदाभास। देखो चिदाभास हो गया है ना। उस चिदाभास से युक्त कौन हो गया? वृत्ति, अनेक अधिवृत्ति है ना। उसको कहते हैं ज्ञान, उसका नाम क्या है? ज्ञान हो गया। हाँ, चिदाभास युक्त बुद्धिवृत्ति कहो, अथवा चिदाभास युक्त बुद्धि इतना भी बोल देते हैं है ना। ये हो गया कौन सा ज्ञान? अनित्य ज्ञान है, अनित्य ज्ञान। जब तक वृत्ति हो रही है तब तक घट भासेगा, अब वृत्ति खत्म हो गई तो ज्ञान होगा घट का? नहीं हो सकता है। हो गए कि नहीं? इसलिए अनित्य ज्ञान, घट ज्ञान, पड़ ज्ञान जो हुआ, घट ज्ञान पड़ ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ? वृत्ति हुई कि चेतन हुआ कि वृत्ति विशिष्ट चेतन हुआ? हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। वृत्ति विशिष्ट चेतन मतलब चिदाभास, अथवा चिदाभास युक्त वृत्ति, दोनों ओर से कह सकते हैं। चिदाभास से युक्त बुद्धि वृत्ति, अथवा बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास, उसका हो गया अनित्य ज्ञान। उससे भिन्न है कुटस्थ ज्ञान, ये कहने जा रहे हैं है ना। इसको बुद्धि में निश्चय करना है। ये बोलते हैं देखो, अनेक धियाम, अनेक बुद्धि रूपी ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है? कहते हैं चिदाभास विशिष्ट है, चिदाभास से युक्त, विशिष्ट मतलब युक्त है। तो उसकी जो संधि है, वृत्ति की जो संधि है, चिदाभास से युक्त जो बुद्धि वृत्ति है, उसकी संधि, संधि मतलब क्या है? यहां पर एक क्षण में एक ज्ञान होगा, जिस समय घटाकार वृत्ति हो रही, मतलब घट का ज्ञान हो रहा है, तो उस समय पट का ज्ञान होगा? नहीं होगा है ना। तो घट ज्ञान के बाद पट ज्ञान होगा है ना। तो एक क्षण में दो ज्ञान तो नहीं हो रहा है, उत्तर क्षण में होगा। तो बीज में थोड़ा सा कुछ समय तो रहेगा, उसी का नाम यहां पर क्या बोल रहे? संधि बोल रहे। दोनों ज्ञान के बीच में होने वाला है ना, जो संधि है, क्षण है ना, तो उसका भान, उसमें भी प्रकाश रहेगा है ना। तो वो प्रकाश को क्या बोले? अनित्य बोलेंगे कि नित्य बोलेंगे? क्यों? उसमें तो वृत्ति नहीं है। दो वृत्ति के जो संधि काल है ना, है ना, वो कौन सा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश। ये बात तो झट से समझ में नहीं आती है ना। जिसका जो अंतकरण विक्षिप्त है ना, उसकी बुद्धि उस संधि पर्यंत जाती नहीं है। इसलिए मन जब शांत होगा ना, तो वो उसका भान होने लगेगा। किसका भान? संधि का भान होने लगेगा। जितना जितना आप अभ्यास करते जाएंगे ना, उतना संधि काल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे पहले अंतकरण क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए, सात्विक बनाना चाहिए। सात्विक बनाने पर ही वो जो संधि काल है ना, उसका निरीक्षण हो सकता है। ये बोलते हैं यहां पर, देखो, चिदाभास विशिष्टानाम अनेक धियाम संधिम। वो संधि जो है उसको कौन प्रकाशित करेगा? कुटस्थ करेगा, कुटस्थ करेगा। क्योंकि ऐसा है, देखो, घटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति में प्रतिफलित चेतन हो गया, प्रतिफलित वृत्ति प्रतिफलित चेतन हो गया, उसके द्वारा तो घट का भान हो रहा है, घट का भान हो रहा है ना? तो उसके बाद पटाकार वृत्ति होने से पहले उसमें वृत्ति नहीं है, घटाकार वृत्ति भी नहीं है, पटाकार वृत्ति भी नहीं है। घटाकार वृत्ति जो है चिदाभास से युक्त होकर के घट को प्रकाश कर दिया, सच में ना? वो तो समाप्त हो गई वृत्ति है ना, वो तो रही नहीं वृत्ति है, इसलिए संधि को फिर प्रकाशित कौन करेगा? कोई होगा जरूर, वो कौन है? वो है सामान्य प्रकाश, वो है कुटस्थ, सच में ना? वो जो घटाकार वृत्ति है वो तो मिथ्या है, वो कैसी है? जड़ है, मिथ्या है। वो तो प्रकाशित कर दिया किसको? घट को, रूप को अथवा नाम को, है ना? इधर नाम रूप भी मिथ्या है और वृत्ति भी कैसी है? मिथ्या है। तो मिथ्या को प्रकाशित करने के लिए सत्य की आवश्यकता नहीं है, हो गया ना? इसलिए नाम रूप मिथ्या को प्रकाशित कर दिया कौन? घटाकार वृत्ति रूपी मिथ्या, बस वो कर दिया। जैसे व्यवहार में बोलते हैं ना कि जैसा देवता होता है उस ऐसी उसकी पूजा होती है। सात्विक देवता हो सात्विक भोग होगा, गणेश जी की पूजा करनी हो तो लड्डू चढ़ाना होगा, हो गया ना? और कोई तामसी देवता हो तो उसके लिए बलि देनी होगी, है ना? इसी प्रकार यहां पर कौन है? ये सात्विक वृत्ति जो है ना, सात्विक वृत्ति ये तो मिथ्या है, वास्तविक तो है ही नहीं, इसलिए मिथ्या होने पर भी नाम रूप का प्रकाश हो जाएगा। घट का नाम, घट का रूप, ये जो हो रहा है इसका प्रकाश किससे हो रहा है? मिथ्या घटाकार पटाकार वृत्ति, चिदाभास से युक्त घटाकार पटाकार वृत्ति, इसके द्वारा नाम रूप घट का प्रकाश होता है। इसलिए पीछे बता दिया तृतीय प्रकरण में, आभास है ना घटस्फुरित, चिदाभास से युक्त वृत्ति के द्वारा घटपट का स्फुरण होता है। तो यहां तक हो गया। और कहते हैं तो धियाम अभावम च, उसका जो अभाव है, किसका अभाव? हाँ, वृत्ति का जो अभाव हो गया। वृत्ति का अभाव किस काल में होता है? सुषुप्ति काल में। ध्यान में दीजिए, जागृत अवस्था में यहां पर तो अंतकरण की वृत्ति हुई, घटाकार पटाकार वृत्ति। सपन में जाएंगे वहां पर भी हुई, सपन में जाएंगे वहां पर भी अंतकरण की वृत्ति हुई, वहां पर चक्षु आदि की कोई जरूरत नहीं है। सपन में ये चक्षु का तो विश्राम हो गया, चक्षु आदि का विश्राम हो गया स्वप्न काल में, लेकिन वहां पर जो अंतकरण है ना, तो वही चक्षु बन जाएगा, वही घटपट सब बन जाएगा, वही रसगुल्ला बन जाएगा, सब बन जाएगा, क्योंकि अंतकरण का स्वभाव ही ऐसा है ना? लेकिन जैसा संस्कार होगा ऐसा आपको स्वप्न दिखेगा, अपने चाहने मात्र से अनुकूल स्वप्न नहीं होता है ना? इसलिए संस्कार जो होता है ना, वो भी क्या होता है? भोग का साधन बनता है, वो भी सृष्टि का साधन हेतु बनता है। जैसा आपका संस्कार है, जैसा आपका संस्कार है ऐसा रस्सी में आपको दिखाई देगा, इसलिए सबको सर्प नहीं दिखाई देता है ना? हाँ, जिसका सर्प संस्कार है उसको सर्प दिखाई देगा, जिसका जो दंड का संस्कार है दंड दिखाई देगा। इसी प्रकार जैसा आपका संस्कार है पूर्व का, ऐसा संस्कार के अनुसार ही स्वप्न आपको दिखाई देगा। इसलिए पूर्व संस्कार से संस्कृत अंतकरण ही सब वृत्ति रूप से घटपटादि रूप से स्वप्न में हो जाता है। तो स्वप्न में भी अंतकरण की वृत्ति हुई है ना, लेकिन उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया तो कहां पर जाएगा छोड़ करके? सुषुप्ति में जाएगा। क्यों जाएगा? अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए, समझ लो है ना। ये अंतकरण रूपी जो बैटरी है ना, ये सुषुप्ति में चार्ज ना हो है ना, उसका व्यवहार जागरण स्वप्न में नहीं हो सकता है। जैसे मोबाइल का चार्ज करते हो कि नहीं, चार्ज करो तब तो चलेगा है ना। इसलिए यहाँ पर मन जो है ना चार्ज करने के लिए जाता है, अथवा ये समझ लो जीव जो है ना अपने अंतकरण रूप बैटरी को चार्ज करने के लिए कहाँ जाएगा? सुषुप्ति में जाएगा है ना। तो सुषुप्ति में जाएगा तो वहां पर अंतकरण की वृत्ति नहीं हो सकती है। अंतकरण की वृत्ति हो जाएगी तो उसको स्वप्न कहा जाएगा, नहीं तो जागृत कहा जाएगा, वृत्ति नहीं होगी। तो वहां पर ध्यान दीजिए, तो वहां पर कैसा भान होता है कि मैं बड़े सुख से सो रहा हूं, होता है कि नहीं? तो होता है, कैसे पता लगता है? उठने के बाद पता लगता है। तो उठने के बाद स्मरण होता है हाँ, कि मैं बड़े सुख से सोया था, अम सुखम अस्वापसम, बड़े सुख से सोया, न किंचित अवैधिशम, कुछ भी मैंने नहीं जाना, कुछ भी मैंने नहीं जाना। ये जो आपको स्मरण हो रहा है तो पूर्व अनुभव के बिना होगा? नहीं होगा। अभी मुझे स्मरण हो रहा है कि कल जो है श्रीखंड खाया था है ना, अभी स्मरण हो रहा है अभी, तो पहले खाया था इसलिए उसका संस्कार पड़ा है ना, इसलिए उसका अभी स्मरण होगा। यद विषय का स्मरणम है ना, तद विषय का पूर्वम अनुभव, पहले पूर्व अनुभव बनना चाहिए। तो अनुभव क्या करेगा? संस्कार को पैदा करेगा। जैसे हमने पहले कल खाया मान लीजिए श्रीखंड, वो जो अनुभव हुआ कि श्रीखंड बहुत बढ़िया था, वो अनुभव क्या करेगा? संस्कार को पैदा करेगा, समझ में है ना, संस्कार को पैदा करेगा। वो संस्कार कहां पर रहेगा? अंतकरण में रहेगा है ना, इसलिए उसके आधार पर अविस्मरण होगा। ठीक इसी प्रकार अविस्मरण हो रहा है ना, कि मैं बड़े सुख से सोया था है ना, तो अभी जो स्मरण हो रहा है इसका संस्कार होना चाहिए, और संस्कार के लिए पहले अनुभव होना चाहिए। जागृत में स्वप्न में तो अंतकरण वृत्ति के द्वारा अनुभव हुआ, ये घाट है ये पट है, ऐसी वृत्ति तो वहां पर है ही नहीं, समझ में ना। तो ऐसी जो विशिष्ट वृत्ति, इसको बोलेंगे विशिष्ट वृत्ति, ये घाट है पट है, एक एक कैसी वृत्ति है? विशिष्ट वृत्ति, विशिष्ट ज्ञान। तो समस्त समस्त विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो गया सुषुप्ति में। किसका अभाव हो गया? विशिष्ट ज्ञान का अभाव हो गया। इसलिए तो बोलता मैं कुछ नहीं जाना, मतलब कोई भी विशिष्ट ज्ञान मुझे नहीं हुआ। तो कुछ नहीं जाना जो बोल रहे हैं ना, तो फिर इसको कौन प्रकाशित किया? अंतकरण तो है ही नहीं वहां पर। हाँ, वो सामान्य है, साक्षी जिसको कह रहे है ना, वो साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। कौन कौन प्रकाशित हो रहा है? वृत्ति का अभाव, नहीं अंतकरण नहीं, वृत्ति का अभाव, विशिष्ट ज्ञान का अभाव वहां पर प्रकाशित हो रहा है, अंतकरण के द्वारा नहीं हो रहा है, साक्षी चेतन के द्वारा है। और आनंद भी प्रकाशित हो रहा है, बड़े सुख से सोया, बड़े सुख से सोया तो सुख भी भान हो रहा है, सुख भी भान हो रहा है। कौन सा सुख? निरीक्षित सुख नहीं समझना है, प्रतिफलित सुख, है ना, तो किसमें प्रतिफलन हुआ, अविद्या की वृत्ति में हुआ, अंतकरण की वृत्ति वहां पर नहीं है। अभी रसगुल्ला खाने पर, श्रीखंड खाने पर अभी जो वृत्ति हो रही है ना जागृत स्वप्न में, यहां पर तभी अंतकरण की वृत्ति है। और सुसुप्ति में जाएंगे तो वहां पर भी सुख मिल रहा है, तो वहां पर अंतकरण की वृत्ति नहीं है, तो वहां पर कैसी वृत्ति है, अविद्या की वृत्ति है, ध्यान में ना। और अविद्या की यदि वृत्ति ना हो, नहीं मानेंगे, तो फिर संस्कार कैसे होगा, बिना वृत्ति से संस्कार नहीं हो सकता है, ध्यान में क्या, वो संस्कार कहां पर रहेगा, सुसुप्ति में जो संस्कार हुआ ना, अनुभव हुआ, देखो मैं बड़े सुख से सोया है ना, हाँ एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई है ना। तो वहां पर सुख कैसा है, प्रतिपलित सुख है, तो प्रतिपलित सुख का भी अनुभव हो रहा है साक्षी से, है ना, तो वो जो संस्कार पड़ रहा है ना अविद्या वृत्ति को लेकर के, वो संस्कार कहां पर रहेगा, अंतकरण का तो व्यापारी नहीं है, तो अंतकरण में कैसे रहेगा, तो वहां पर समझना चाहिए अविद्या में रहेगा, ध्यान में ना, जिसमें मन लीन हो गया ना, कहां पर लीन हो गया, अविद्या में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन नहीं होगा, ध्यान में ना, ब्रह्म में लीन कब होगा संसार, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तब ब्रह्म में लीन हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय जब तब होगा जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, हो गया ना भी, अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, यही बात अभी आएगा। इसलिए वहां पर जो संस्कार जो है ना कहां पर रहेगा, अविद्या में रहेगा, जहां पर मल लय हो गया, लय मतलब ऐसा नहीं समझना है जैसे सुवर्ण से अलंकार बना है, अलंकार वास्तविक लय हो गया, गर्म करके पिघला दिया तो है, तो पिघला दिया तो फिर दोबारा उसको पहन सकते हो, नहीं पहन सकते, पहनना हो तो क्या करना चाहिए, उसको बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है सुसुप्ति में जाएंगे तो मन ऐसा लय हो जाएगा, नहीं होगा, फिर ऐसा लय होगा दूसरा मन आएगा, फिर हो गए कि नहीं, दूसरा मन यदि आएगा तो फिर उड़ने के बाद फिर भूल जाएगा सबको, आप कौन है माता श्री बोलेगा, है ना, फिर पूछना पड़ेगा पाठ कहाँ से चलाना है, ये भी पूछना पड़ेगा, ऐसा लय नहीं समझना है, फिर मानवीय के में से विचार आया। तो लय फिर कैसा है, जैसे अभी सब दिख रहा है, विशिष्ट दिख रहा है ना, ये अमुक है पुस्तक है कुर्सी है सब दिख रहा है ना, अब पूरा अंधकार हो गया तो, पूरा अंधकार हो गया तो नहीं की तरह हो जाता है, अंधकार ही अंधकार है ना। इसी प्रकार ये जो विशिष्ट ज्ञान हो रहा था ना जागृत में स्वप्न में, मन भी है ना, ये सब जो है सुसुप्ति में जाएंगे तो क्या, अविद्या ही अविद्या है, तो इस दृष्टि से सबका लय हो जाता है ऐसा मानते हैं सुसुप्ति में, है ना। इसलिए संस्कार कहां पर रहेगा, अविद्या में रहेगा, अंतकरण में नहीं रहेगा, क्योंकि अंतकरण का व्यापार नहीं हो रहा है, वो जो संस्कार अविद्या में है मतलब कारण में है, तो मन का कारण कौन है, अविद्या है। और उठने पर जो है अब स्मरण हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है, वो संस्कार अभी मन में आ जाएगा। जैसे धागा यदि सफेद है तो कपड़ा भी कैसा होगा, सफेद होगा, है ना। कारण का गुण कार्य में आता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर तंतु कौन है, अविद्या, तो अविद्या में संस्कार पड़ा है, किसका संस्कार, किसका संस्कार है ना, सुख के अनुभव से होने वाला संस्कार, मतलब सुख का संस्कार, और नहीं जाना ऐसा अनुभव से होने वाला संस्कार, हो गया ना भैया। वो संस्कार जो अविद्या में है मतलब कारण में, उठने के बाद कारण का जो धर्म है, कौन सा धर्म, संस्कार, वो संस्कार जाएगा मन रूपी कार्य में, जैसे वस्त्र में आ गया तंतु का धर्म हो गया ना, वो मन जो संस्कार, मन में जो रहने वाला संस्कार है, वो संस्कार से युक्त मन में फिर अहम ऐसा कर लेगा। कौन कर लेगा? कौन करेगा? चिदाभास करेगा, जीव करेगा, हो गया कि नहीं। और उड़ने के बाद यदि उस मन में अब अहम बुद्धि नहीं करेंगे तो आप जीव नहीं बनेंगे, हो गया कि नहीं। उड़ने के बाद फिर जीव भाव आ जाता है, जैसा था ऐसा आ जाता है, भूल जाता है उसको, ज्ञान नहीं हुआ इसलिए भूल जाता है, है ना। जो मैं प्रकाशित किया, जो मेरा स्वरूप कुटस्थ है, साक्षी है, जिसने प्रकाशित किया किसको, है ना, सुसुप्त आनंद को, और नहीं जाना ऐसा वृत्ति के अभाव को, जो मैं प्रकाशक हूं उसका, वो स्वरूप मेरा है, ऐसा ज्ञान उड़ने के बाद नहीं होता है। पढ़ मेरे भाई, नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उड़ने के बाद उस मन में फिर अहम बुद्धि हो जाती है। जब मन में जो अहम बुद्धि हो गई तो उस स्वरूप को भूल जाता है, है ना। जो मेरा स्वरूप जिसने प्रकाशित किया सुसुप्ति में होने वाला सुख को, वृत्ति के अभाव को, है ना, उसका भान नहीं होता है। ये बात कह रहे हैं, देखो, धियाम अभावम च भाषयम, धी का अर्थ वृत्ति, वृत्ति का अभाव हो गया कहां पर? सुसुप्ति में, अथवा निर्विकल समाधि में, समझ लो। तो निर्विकल समाधि में भी, असंप्रज्ञा समाधि में भी वृत्ति का अभाव है। उस वृत्ति के अभाव को किसने प्रकाशित किया? सामान्य कूटस्थ चैतन्य। इसलिए ये बात कब समझ में आएगी? दोनों को आप पृथक करेंगे तो, दोनों को अलग अलग करके विचार करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वामी भारती तीर्थ जी, प्रविविच्यताम, मतलब प्रकर्षण विविच्यताम, दोनों मिले जुले नहीं है, दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है। एक सामान्य चेतन हो गया और दूसरा होगा वृत्ति प्रतिफलित विशिष्ट चेतन हो गया। तो विशिष्ट चेतन से सामान्य भिन्न होता है, हो गया ना भाई। मिथ्या से सत्य भिन्न होता है, लेकिन मिथ्या सत्य से भिन्न नहीं होता है। यहां तक पहुंचना है, हो गया ना। हाँ, मिथ्या सत्य मिथ्या से भिन्न होता है, सही बात है ना, लेकिन मिथ्या सत्य से भिन्न नहीं होता है। पकड़ माई बात को, क्योंकि मिथ्या की वास्तविक सत्ता नहीं होती है। पर्दा चित्र से भिन्न है, लेकिन चित्र पर्दा से भिन्न नहीं है। पकड़ माए कि नहीं है? तो पहुंचना है कहां पर? पर्दे में पहुंचना है। यहां पर पर्दा कौन? कूटस्थ। प्रकरण चल रहा है कूटस्थ, तम पद का लक्ष्यार्थ, ये हो गया पर्दा, और चित्र हो गया तम पद का वाच्यार्थ, मतलब चिदावास हो गया, हो गया ना भाई। इसलिए अंतकरण जो वो भी चित्र हो गया, और अंतकरण में प्रतिफलित चिदावास है वो भी चित्र हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। जैसे आप स्वप्न में जाते हो, स्वप्न में जाते हो तो अनेक शरीर दिखता है ना, अनेक शरीर दिखता है, रसगुल्ला भी दिखता है, खाने वाला भी दिखता है, हो गया ना। तो रसगुल्ला भी चित्र हो गया, ये शरीर है ना, ये शरीर जिस हाथ से आप उठा करके खा रहे हो, तो ओहो हाथ भी कैसा हो गया? चित्र हो गया। और उस हाथ में अभिमान करने वाला है ना, जो इतने फुट का जो शरीर है, इसमें जो अंबुद्धि करने वाला, वो भी क्या है? चित्र है कि क्या है? वो भी चित्र हो गए ना, सब चित्र हो गए, शरीर भी चित्र और शरीर अभिमानी वो भी चित्र हो गया। इसी प्रकार अंतकरण भी चित्र है ना, अंतकरण में प्रतिफलित चिदावास वो भी चित्र हो गया, दोनों के दोनों सब चित्र हो गया, है ना। और जिसमें भाषण है वो कैसा होगा? चित्र होगा कि पर्दा होगा? पर्दा होगा। इसलिए वो जो कुटस्थ ब्रह्म है ना, मतलब लक्ष्यार्थ, वो वाच्यार्थ से भिन्न होगा, पर्दा चित्र से भिन्न जैसे है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझे, और वो दोनों में से किसको अपना स्वरूप समझना है? हाँ, यहाँ पर कुटस्थ को समझना है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं। तो प्रविविच्यताम दोनों को अलग अलग कर लो, इसलिए चिदावास हो गया दृष्टा, है ना। घटाकाल वृत्ति में जो प्रतिफलित चिदावास हो गया ना, उसका नाम क्या हो गया? दृष्टा। वही बुद्धि वृत्ति को लेकर के घट को देखता है, वो देखता है। कब तक देखेगा वो? जब तक वृत्ति हो रही है तब तक देखेगा। इसलिए घटाकार पटाकार वृत्ति को लेकर के चिदावास का नाम क्या होगा? देखने वाला हो गया, देखने वाला हो गया। देखने वाला कौन हो गया? दृष्टा, चिदावास हो गया। और दिखने वाला कौन हो गया? घट हो गया। तो एक देखने वाला हो गया और एक दिखने वाला हो गया, तो कौन सत्य है? भैया आप सपने में देखते हो, रसगुल्ले को देख रहे हो, आप देखने वाले सत्य हो कि जो है रसगुल्ला दिखने वाला सत्य है? दोनों सत्य नहीं, पकड़ना यहीं पर जागृत में हो गया। लेकिन आप घट को देख रहे हो, दिखने वाला घट हो गया, है ना, और देखने वाला क्या हो गया? दृष्टा, चिदावास हो गया, है ना। लेकिन कूटस्थ जो है, कूटस्थ दोनों को प्रकाशित करने वाला कूटस्थ जो है ना, वो ना देखता है ना दिखता है, है ना। जिससे देखने वाला भी भास रहा है और दिखने वाला भी भास रहा है, वो हो गया कूटस्थ। उसको कह रहे हैं तुम पद का लक्षार्थ, वो अपना स्वरूप है। ऐसा जब शोधित हो जाएगा तुम पदार्थ, तब तो जाकर के ब्रह्म के साथ एकत्र होगा, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान होगा। ये बात आगे कहने जा रहे हैं, आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।